ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी तत्व, उनकी सरकार कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चलती है। आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर अब अवसरों की भूमि के रूप में उभर रहा है।
नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, आप असम जाएंगे तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट देखेंगे। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं, सैकड़ों किलोमीटर की नई रेल लाइनें बिछाई गई है। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है।
गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 26 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया। श्री शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ और सेना ने दुनिया के सामने बहादुरी का अद्वितीय उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की धरती पर आतंकी हमलों के जवाब में इतिहास का सबसे सटीक और सफल ऑपरेशन है और इसने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। पिछले दो वर्षों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए लगभग 3,000 अग्निवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर में आगे बढ़कर नेतृत्व किया। अग्निवीरों में से अधिकतर 20 साल के युवा थे, जिन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों की रक्षा की। इन युवाओं ने 4 दिन के सैन्य जवाबी कार्रवाई के दौरान आतंक के गढ़ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि भारत के आतंकरोधी सफल अभियान पर कांग्रेस नेता ने गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है। श्री राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए भारत की वैश्विक साख के साथ समझौता करने का आरोप लगाया था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल से बातचीत की। बातचीत के बाद श्री वेटफुल ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध भारत की कार्रवाई के अधिकार का समर्थन किया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समाधान के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व में जापान गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आज तोक्यो में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के आतंकरोधी अनुसंधान समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष यासुहिरो हनाशी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख के बारे में बताया। दोनों पक्षों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराया। डीएम के सांसद कनीमोई करुणानिधि के नेतृत्व में एक अन्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए विभिन्न उपायों के अनुरूप मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल जमा करने की सुविधा शुरू की है। चुनाव निकाय द्वारा जारी बयान के अनुसार मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर केवल स्विच ऑफ मोड में मोबाइल फोन रखने की अनुमति होगी। तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने हेड टू हेड चैलेंज में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। मिस वेल्स, मिस टर्की, मिस त्रिनिदाद और टोबेगो और मिस जाम्बिया महाद्वीपीय विजेता बनकर उभरी और उन्होंने शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त किया। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। लखनऊ में खेले जा रहे इस मैच में टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 ओवर में 2 विकेट पर 71 रन बना लिए हैं। क्वालालंपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदांबी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव को 24-22, 17-21, 22-20 से हराया। सेमीफाइनल में श्रीकांत का सामना जापान के युशी तनाका से होगा। मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला को चीनी जोड़ी से 22-24, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।